ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। अर्थात वीतराग विज्ञानता को नमन करने के बाद गुरुओं की करुणा दृष्टि का वर्णन किया कि जो हमें चारों गतियों से उबरने का, सिद्ध गति को प्राप्त करने का और जो पर्याय मिली है उसे सार्थक करने का जो उपदेश दिया है उसको जान रहे हैं। आपने पहले तिर्यंच गति के दुखों के बारे में जाना कि जीव निगोद से एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते करते विकलेंद्रिय त्रस की पर्याय में, पंचेंद्रिय पर्याय में, पशु पर्याय में भी आया तो भी उसे कितने कष्ट सहने पड़े। पुनः बिलखते बिलखते वहां से कष्ट पाकर संक्लिष्ट परिणामों से मरकर नरक में गया और नरक के अपार दुखों को किसी तरह से सहन किया। नरक में जघन्य आयु है 10,000 वर्ष की और उत्कृष्ट आयु है 33 सागर की। दुख में तो 2 क्षण भी बहुत ही लंबे लगते हैं और सुख में बहुत सारा समय निकल जाता है, पता नहीं चलता। नरक में वेदना न जाने कितनी बार सहन की और उसके बाद किसी तरह से मनुष्य गति में आए हैं तो तीसरी गति का वर्णन ये चल रहा है। जैसे तैसे करके जन्म ले लिया, शिशु अवस्था से, बाल्यावस्था से पुनः युवावस्था में प्रवेश किया और करते करते मानव जन्म की सार्थकता को समझ नहीं पाए, सारे दुखों को भूल गए, क्षणिक सुख में भूल गए तो उसी की याद दिलाते हैं। बालपने में ज्ञान न लयो, अरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। एक छंद मात्र के अंदर सारा कुछ सार भर दिया कि हे मानव, हे भव्यात्मन, जन्म लिया बालपन में अज्ञान रहा, बाल्यावस्था अज्ञान अवस्था कहलाती है और वह केवल लाड़ प्यार में, खेल कूद में, अज्ञानता में व्यतीत हो जाती है। कोई महान पुण्यात्मा जीव होते हैं तो बचपन से उन्हें अनेक प्रकार का ज्ञान हो जाता है तो उनका बचपन और युवा सब सार्थक हो जाता है। ये बचपन के सबके खेल एक जैसे होते हैं, यानी बचपन की जो बाल क्रीड़ा है सब एक जैसी होती है। बस इतना जरूर है जैसा बच्चे को माहौल मिलता है वैसा रच पच जाता। आज बालपन कैसे निकलता है? मोबाइल से। अगर मोबाइल देख रहा होता है बच्चा, आराम से खाना खा लेता है, उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है, ले लेते हैं, रोने लगता है और उसकी जिद को पूरी करने के लिए आखिर माता पिता फिर उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। फिर चाहे वो कुछ भी, चाहे कार्टून देखता है और चाहे कोई गेम देख रहा होता है, अच्छा लगता है उसे और वही जो अच्छा लगना पना है वही आगे के लिए उसके लिए घातक बन जाता है। और कतिपय दुर्लभ जो संस्कारित परिवार हैं वे नमोकार मंत्र से अपनी बालक की क्रियाओं का, उसकी एक्टिविटीज को शुरू करते हैं तो बच्चा नमोकार मंत्र सुने बिना भोजन नहीं करता। लोग कहते हैं जैसे ही हम पारस चैनल खोलते हैं जय 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 करता है, कोई मुनिराज का दर्शन हुआ, कोई भगवान का दर्शन हुआ, माता जी का दर्शन हुआ, तो ये संस्कार है। एक तो क्या है, जनरल स्थिति बताई है आपको कि हर प्राणी की स्थिति, नाना जीव जो संसार के अंदर हैं, बालकपन में उन्हें ज्ञान नहीं रहता, अज्ञानता है, तरुण समय तरुणी रत रहे हो, युवावस्था आती है, अपने विषय भोगों में रम जाते हैं, तब माता पिता का भी पता नहीं रहता है, यानी उनकी भी खबर नहीं रहती, अपने सुखों में ही केवल निमग्न रहते हैं, हमसे किसी को क्या कष्ट हो रहा है ये भी नहीं समझ पाते, अर्ध मृतक सम बूढ़ापन हो। और ऐसे ही जब बुढ़ापा आने लगता है और आ जाता है, समझो 60 साल के बाद, तो अर्ध मृतक के समान ये जीव हो जाता है, तो कैसे रूप रखे आप लोग, अपना रूप यानी आत्मस्वरूप आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये किसको संबोधन दिया? ये भगवान को संबोधन नहीं दिया है, ये अपने को संबोधन देने की कहानी है, ये श्लोक है। और जो तीनों को सार्थक कर लेते हैं तो फिर तो उनके जीवन का कहना ही क्या, उनका बाल्यपना, युवावस्था और वृद्धावस्था सब कुछ कल्याणकारी, अपने लिए भी कल्याणकारी होता है, पर के लिए भी कल्याणकारी होता है। हम जितने महापुरुषों की कहानी सुनते हैं, क्या कुंद कुंद देव की ले लीजिए, रानी मदालसा ने अपने पुत्रों को किस प्रकार से संस्कारित किया, पालने में झुलाते हुए भी पढ़ती थी क्या, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया परिवर्जितो सी। तो संसार की माया उनको बताई जाती है कि ये कितनी क्षणिक है, कितनी विनश्वर है, अविनश्वर है तो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन स्वरूप तेरी आत्मा। और आत्मा प्रत्येक शरीर के अंदर, रोम रोम के अंदर आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। आज आप ज्ञानमती माता को देखते हैं कि जिन्होंने बचपन को भी सार्थक किया, कैसे बचपन में ही थी, और इनके घर में जब बच्चे बीमार पड़े भाई लोग, तो इन्होंने अपने सम्यक दर्शन की दृढ़ता का परिचय दिया कि कोई दैवी प्रकोप नहीं है, हम इधर उधर कहीं सिर नहीं मारेंगे, हम शीतलनाथ भगवान की पूजा करके और भगवान के अभिषेक के गंधोदक को लगाएंगे। सारे नगर के अंदर रोग व्याप्त था, लोग इधर उधर जा रहे थे, कोई शीतला माता को मना रहे होते थे, इन्होंने कहा नहीं, कोई माता जिसके साथ में लगा है, कोई भी हो, वो माता कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकती। तमाम बच्चे मर गए और इनके भाई जीवित हो गए शीतलनाथ भगवान की गंधोदक के प्रभाव से। बचपन इन्होंने सार्थक कर लिया, आज भी उस इनकी जन्मभूमि, केवल उस घर में नहीं, पूरे टिकैत नगर के अंदर आज कोई किसी भी कुरीति का पालन नहीं करता है, सब लोग जिन मंदिर के भक्त हैं, और लगभग 80 घर होने के बाद पूरे मंदिर के अंदर रात 4 बजे से ऐसी भीड़ रहती है, बालक बच्चे, छोटे छोटे बालक बालिकाएं, युवा वृद्ध सब, साल भर से लेकर के और 80 साल 90 साल तक के सब लोग मंदिर जाते हैं, भगवान का नमन करते हैं और अपने दिवस का शुभारंभ करते हैं, खूब सुखी संपन्न है। तो ये संस्कार बचपन से ज्ञानमती माता जी ने स्वयं सबके अंदर डाल दिए, और इनके अंदर संस्कार इनकी माँ ने डाला, और पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ के स्वाध्याय से वह संस्कार प्राप्त हुए कि अनादिकाल से निगोद आदि अवस्थाओं को प्राप्त करके हमने ये मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से पाई है। युवावस्था में जब खेलने और खाने के दिन थे, जब सोने के दिन चांदी की रातें थी, ऐसे समय में इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के अपनी काया को कुंदन बना लिया। आज आप देखो 91 साल की उम्र है और शरीर का रोम रोम तपस्या से, संयम से, साधना से, ब्रह्मचर्य से, ज्ञान से, रत्नत्रय से इतना पवित्र हो गया है कि कोई दर्शन भी कर लेता है, कितना अशांत व्यक्ति हो और उसको शांति की अनुभूति हो जाती है। तो इन्होंने अपना बचपन, अपनी युवावस्था और अपनी वृद्धावस्था भी सार्थक किया है। और अभी परसों ही माता जी कह रही थी, मैं बुढ़ी नहीं हुई हूं, यानी उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनकी भक्ति इतनी युवा है कि आज भी वे पूर्ण सजग रह करके अपनी समस्त क्रियाओं का परिपालन कर रही हैं। ऐसे जीवों का जन्म सार्थक होता है। ये महान आत्माएं होती हैं, इसलिए इनके लिए लिखा गया, जो महा आत्माएं होती युग परिवर्तन कर देती हैं, अपनी तप त्याग कथाओं से नित्य नव जीवन भर देती हैं। ऐसी महान आत्माओं में आचार्य शांति सागर महाराज, जिन्होंने अपने जीवन को किस तरह से परोपकार में लगाया, उनके 36 साल का मुनि जीवन जो था उसमें 25.5 साल उपवास में निकले। सोचो क्या होते हैं 25.5 साल, 10,000 से ज्यादा उनके उपवासों की संख्या थी। अर्थात उन्होंने अपनी आत्मा को एकदम पवित्र बना लिया और उन्होंने पूज्यपाद स्वामी के शब्दों को सार्थक किया। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। हे भव्यात्मन, जिससे जीव का माने आत्मा का उपकार होता है, व्रत से, संयम से, साधना से, उससे देह का अपकार होता है। अर्थात देह तो थोड़ी मुरझाती है, शरीर को कष्ट होता है, लेकिन जिससे शरीर का उपकार होता है उससे आत्मा का अपकार होता है। उससे आत्मा को कष्ट पहुंचता है, उससे आत्मा कर्मों के बंधन में जकड़ती चली जाती है। इन श्लोकों को सूत्र रूप से बता करके आचार्य देव कहते हैं कि हे भव्यात्मन, अब निर्णय तेरा है। इतश्चिंतामणि चिंतामणि दिव्य इतः पिण्याक खंडकम् ध्यानेन चेद हुए लब्बे क्वाद्रियम ताम विवेकिनः। अर्थात आपके एक हाथ में चिंतामणि रत्न है और एक हाथ में खली का टुकड़ा है। बोलो किसको पसंद करेंगे? चिंतामणि रत्न को कहेंगे तो यही आप। खली का टुकड़ा मतलब पंचेंद्री के सांसारिक विषय सुख, और चिंतामणि रत्न मतलब महाव्रतों को धारण करना, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना, मनुष्य जन्म को सार्थक करना, ये चिंतामणि रत्न के समान है। तो ध्यान से दोनों ही चीजें प्राप्त होती हैं, चाहे आर्त रौद्र ध्यान करके और खली के टुकड़े के समान सांसारिक सुखों को प्राप्त करके अपने नरक और तिरेंच गति के मार्ग को खोल लें, और चाहे तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा उस चिंतामणि रत्न स्वरूप भगवान आत्मा को प्राप्त कर लें। ये निर्णय हमारा और आपका है। आज 140 करोड़ की संख्या वाले भारत देश के अंदर आप बताओ, इस आध्यात्मिकता को प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं? पॉइंट माइनस में जाएंगे आप कि इसमें आज कम से कम 1700 से 1800 साधु इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर हैं जो अध्यात्म तत्व का चिंतन करते हैं। तो क्या हुआ, बहुत कम है ना चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने वाले? लेकिन उस चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने के लिए यदि आप भी भावना भाते हैं, सामायिक करते हैं, समता भाव रखते हैं, संघर्ष नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, पारस्परिक प्रेम का परिचय देते हैं और धर्म में अनुराग होता है, धर्म का साम्राज्य जहां पर रहता है, तो समझे वहां मनुष्य जन्म अपना सार्थक होता है, चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होने लगती है। यत्र धर्मस्य साम्राज्यम्, यत् जहां पर धर्म का साम्राज्य होता है, प्रेमाधिक्यम च दृश्यते, और जहां प्रेम की अधिकता माने वात्सल्य, प्रेम की अधिकता मतलब बिल्कुल अटैचमेंट नहीं, सांसारिक राग ही नहीं केवल, लेकिन जिसके साथ रह रहे होते हैं उनमें प्रेम लड़ाई नहीं है। वरना आज क्या है कि एक दूसरे की भावनाओं की कदर लोग नहीं करते। तो क्या दो जने हैं घर में, एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर है, तो 36 का आंकड़ा हो जाता है। और जहाँ एक दूसरे की भावनाओं को जानने के लिए उदारता का परिचय देते हैं, वहां ये 63 बन जाते हैं, यानी एक के सामने एक होकर के पारस्परिक प्रेम का परिचय देते हैं। तो ऐसा प्रेम, ऐसा धर्म का साम्राज्य जिस घर के अंदर होता है, तब तद्गृहे तोस पीयूषम सफलाश्च मनोरथा। उस घर के अंदर संतोष रूपी अमृत की धारा बहती है और सभी मनोरथ सफल हो जाते। माने बैठ करके अगर एक दूसरे के पूरक बन करके कुछ चिंतन करते हैं, आगे उन्नति के मार्ग पर चलते हैं, तो गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करते हुए मनोरथ सफल होते हैं। यही मनोरथ सफल करने के लिए मनुष्य जन्म की सार्थकता को बताया कि भाई देखो, घड़ी में सेकंड की सुई के समान जल्दी जल्दी से अपना शैशव और बचपन निकला जा रहा है, उसके बाद मिनट की सुई के समान युवावस्था आ जाती है। देखते 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 एक चक्कर लगाती है सुई, सेकंड की एक मिनट हो जाता है और मिनट ही घंटे बना देते हैं, और फिर घंटे जो हैं दिन सप्ताह पक्ष वर्ष और धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। और कब वृद्धावस्था आ जाती है, कब हाथ में लकड़ी आ जाती है, कब कमर झुक जाती है, कब केश सफेद हो जाते हैं, कब दांत निकलने लगते हैं और कब शरीर जवाब देने लगता है, ये शारीरिक स्थिति अपने को देखती देखती आ जाती है। तब कहा कि कैसे रूप लखे आपनो, अपना रूप ही व्यात्मन, कैसे आत्म स्वरूप को कैसे पाओगे। उस आत्म स्वरूप को पाने के लिए ही घर में रहते हुए भी भरत चक्रवर्ती के समान जलते हैं भिन्न कमल के समान भी जीवन को व्यतीत किया जा सकता है, क्योंकि ईंट चूने के मकान के अंदर और सचेतन जो स्त्री पुत्र आदि हैं, इन सब में अनुराग रखते हुए भी धर्म में अनुराग रखना, गुरु में अनुराग रखना और धर्म की ओर भी चलना, गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करना, तो समझो कि गृहस्थ धर्म ही मुनि धर्म का छोटा भाई बन जाएगा। समझे ना। इसी अयोध्या के अंदर जब दशरथ पुत्र भरत को आचार्य द्युति महाराज ने संबोधन दिया जिन मंदिर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भरत, मैं जानता हूं आप बहुत वैरागी हैं, बिल्कुल राज सिंहासन छोड़ करके संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन सुनो, आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो आप भी मुनि धर्म के छोटे भाई के समान हैं। ये पंक्तियां हर घर में लिख लेना, गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का लघु भ्राता है, ये जैन रामायण कह रही है। ऐसे छोटे भाई के रूप में हम आप सबने जो गृहस्थ अवस्था प्राप्त की है मनुष्य जन्म में, जैन कुल प्राप्त किया है, जिन धर्म को पाया है, देवसास गुरु की शरण पाई है, तो उसको हमेशा सार्थक करते हुए अपने मनुष्य जन्म को भी सार्थक करना। और अब हम जिन गुरु का पूर्वक हमें शिक्षा दे रहे हैं, इसी शिक्षा को उन्होंने अपने शब्दों में बता दिया है, उस शिक्षा को ग्रहण करते हुए हम योग्य शिष्य भव्यात्मा भक्त बने और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना, और केवल इस ढाल के अंदर देवगति के सुख और दुखों की कहानी कहने वाले दो पद्य और बचे हैं, तो आप एक ढाल का भी अध्ययन एक ढाल का अध्ययन तो परिपूर्ण कर लेंगे और फिर आगे आगे हम इसी प्रकार से चलते रहेंगे।